स्वराज चौहान जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वराज जी, 15 साल पुराना राज्य जिसे यूपी से काट के बनाया गया, कई सपने होंगे वहाँ के मुख्यमंत्रियों के कि कैसे उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, चमकेगा भारत में, दुनिया में, और अचानक से एक बात होती है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है रातों रात। तो क्या मामला है पूरा, कुछ इस पे प्रकाश डालेंगे?
ये बहुत ही जो हाल ही में कुछ दिनों में उत्तराखंड जो एक पर्वतीय और रमणीक इलाका है, और जैसे आपने कहा कि ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ कोई 15-1 साल पहले, तो वहाँ पे जो राजनीति है काफी, पहाड़ों में जैसे आपको पता बड़ा शांत वातावरण रहता है, बहुत दूसरा, अब आजकल कुछ दिनों में बहुत गर्मा गई है, और उसकी वजह से दिल्ली में भी राजनीति खूब गर्मा गई है, और दोनों जगह एक बड़ा तगड़ा राजनीति का दांव पेच चल रहा है। ये हुआ कि कुछ वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का राज्य चल रहा है और हरीश रावत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वहाँ पे कुछ जैसा आम हो जाता है पार्टियों में, कुछ लोग बगावत पे उतर गए। कांग्रेस के MLA जो हैं, असेंबली के जो हैं, वो उन्होंने 9 उनका नंबर है, 9 है, तो उनकी वजह से क्या हुआ कि अब सब ये चाहते हैं कि कांग्रेस का तो राज चल ही रहा था कि बीजेपी भी ये चाहती है कि अब इसमें भी कुछ खेला जाए, तो हो सकता हम भी इसमें मौके का फायदा उठाते हुए शासन में आ जाएं। तो राष्ट्रपति ये उन्होंने जो वहाँ के गवर्नर हैं उत्तराखंड के, जो राज्यपाल हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हारे को ये बागी हो गए हैं आपके कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव, तो आप जो है अपना यहाँ पे असेंबली के फ्लोर पे आप अपनी स्ट्रेंथ, अपना बहुमत करिए, प्रूव करिए। तो वो एक तारीख रखी गई थी कि 28 मार्च को आप यहाँ पे आके अपना वोटिंग होगी या जो भी होगा वहाँ पे दिखाइए कि हमारे पास बहुमत है। उसका भी एक कारण है जिसको मैं बाद में आपको बताऊंगा कि एक अप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो पास करना पड़ता है, जो हर जगह बजट बनते हैं आपके भारत सरकार के, भारत पार्लियामेंट में जैसे संसद में बिल पास होता है, उसके बाद से बजट पास होता है, और अप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो जाए तो फिर सरकार को ताकत मिलती है कि वो खर्चा करे, सरकारी खर्चा करे। अब यही स्थिति देहरादून में, जहाँ की उत्तराखंड का राजधानी है, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी को और हरीश रावत जी चीफ मिनिस्टर को राज्यपाल ने बोला कि आप यहाँ पे प्रूव करिए कि आपके पास पूरा बहुमत है उस एप्रोप्रिएशन बिल को पास कर। ये होना था सोमवार को, मतलब पिछले कल। तो उसमें क्या हुआ कि उससे एक दिन पहले ही वहां से, दिल्ली से एक हुक्म आता है सरकार का, और राष्ट्रपति शासन यहाँ शुरू लागू हो जाएगा, और जो सरकार हरीश रावत जी की है उसको एनिमेशन पे रखेगा, उनको हटाया नहीं गया, टेम्परेरी एनिमेशन, मतलब ताकत उनकी जो भी पावर्स है वो अब राज्यपाल के पास चली गई और जिन्हें गवर्नर कह। तो इस स्थिति में अब जो उसके क्या क्या आगे,
आपने कहा कि विधानसभा को भंग नहीं किया गया बल्कि सिर्फ निलंबित रखा गया है, तो इसका नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य के स्तर पे क्या क्या महत्व हो सकता है
इसका? सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें अब दोनों पार्टीज अपना अपना पक्ष लेके, अपना अपना एक्सप्लेनेशन लेके अपनी अपनी राजनीति चला रहे हैं, उसके साथ एक कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई है, क्योंकि मसला जो है ये एक, जबकि जब कहीं भी एक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसको ये नहीं मर्जी कि दिल्ली सरकार या दिल्ली से वो फैसला कर लें, वहाँ पे प्रधानमंत्री फैसला कर लें या उनकी पार्टी फैसला कर ले, जो भी शासन में है वो फैसला कर ले और वो कह दें कि हाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया हम हटाते हैं। एक इसका पूरा प्रोविजन दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, जो कि आर्टिकल एक स्पेसिफिक उसमें आर्टिकल में मेंशन है कि उसके तहत कंडीशन है कि कैसे कैसे किस कारण से लगाया जा सकता
है। जी, धारा 356 की बात कर रहे हैं आप।
धारा 356 से ये लगाया जाता है कि भाई यहाँ पे हम इसके ये कारण है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है।
जी,
मतलब कि जो सरकार चल रही है वो हमारे संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो उसका ये मतलब होता है कि उसमें वो अपनी ये दोनों पार्टीज को ये प्रूव करना पड़ता है कि इसमें हमने क्या कारण रहे कि जिससे हमने इस कांग्रेस जो भी पार्टी है उसको हटाया गया और उसका उसे उसके कार उसको अभी कार नहीं करने दे रहे हैं, और राष्ट्रपति के अनुसार पावर दी गई है गवर्नर को कि जो सरकार पॉलिटिकल चलाती है, जो कांग्रेस पार्टी चला रही थी, उसकी जगह गवर्नर चलाएंगे। तो इसकी वजह से अब इसमें लीगल क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड अपना अपना कह रहे हैं। वो हरीश रावत जी जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि ये तो डेमोक्रेसी की हत्या कर दी गई है, और दूसरी तरफ जो है ये कह रहे हैं ये अपने
अरुण जेटली
साहब, उन्होंने भी ये कहा कि यहाँ भी ये लोकतंत्र का खून हो रहा है, और बड़े मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड दोनों पार्टी यूज कर रही है। अब इसका मसला जो है, अभी कांग्रेस पार्टी ने क्या करा कि ये वहां के जो उत्तराखंड के हाई कोर्ट में चले गए, ये जो कार्य हुआ है ये इलीगल है और सरकार को बर्खास्त नहीं करना है, वो सरकार को टेम्पररी एनिमेशन में नहीं जाना चाहिए था। तो इसके जो इम्प्लीकेशंस आपने जो मुझसे पूछे हैं वो बेसिकली ये हैं कि अगले साल उत्तराखंड में असेंबली के इलेक्शन होंगे, जो भी पार्टी पावर में रहती है ये सब जानते हैं, तो उसको थोड़ा लीवरेज मिलता है, उसको थोड़ी ताकत मिलती है, तो अगला इलेक्शन होगा उसमें थोड़ा इन्फ्लुएंस हो सकता है, पावर आपके ऊपर, स्टेट मशीनरी आपके पास होगी। तो इलेक्शंस में जब आप इलेक्शन बोर्ड में आते हैं तो उसमें प्रचार में दूसरे में अगर आपके पास सरकारी ताकत है तो उसमें आपको वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो ऐसा तो चलता ही है। तो इसमें बीजेपी का जो कांग्रेस वालों का ये कहना है कि इन्होंने अब यूं हटाई यहाँ पे हमारी जो टेम्पररी एनिमेशन कह लीजिए जो भी है, सरकार से ताकत हमारी लेके गवर्नर साहब को देगी, जो कि डायरेक्टली दिल्ली के कंट्रोल में है, मतलब कि जो वहाँ की कैबिनेट कहेगी, वहाँ से मोदी सरकार कहेगी, और वो यहाँ पे चलेगा। तो अब ये उनका है कि इसमें भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो सबको ध्यान में रखनी है, ये नहीं है कि जो वहाँ पे दिल्ली की सरकार है वो डिसाइड करेगी कि उत्तराखंड की सरकार पे ये हटा दिया जाए, पावर गवर्नर को दी जाए, कि दो महीने के अंदर इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि एक सही कारण था। और ये मसला जो है ये भारतीय संसद में, इंडियन पार्लियामेंट में, दिल्ली में पार्लियामेंट में पेश होगा कि ये, और उस पर वोटिंग होगी, ये सही रहा कि नहीं रहा। तो ये जो है उससे पहले ये चाहेंगे, अब ये बीजेपी भी जानती है कि वहां पे लोकसभा में तो उनका बहुमत है लेकिन राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं है। तो ये जो इनका जो निर्णय लिया है इन्होंने कि इस सरकार को सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दीजिए और यहाँ से चलेगा, तो उनको ये कहा जा रहा है सब जगह कि बीजेपी भी ये जानती है कि वो वहां पे ये अपना जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमने प्रेसिडेंट रूल जो है यहाँ पे उत्तराखंड में लगा दिया। तो वो क्या करेंगे कि अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो इनकी स्ट्रेंथ है मेंबर्स की इस टाइम, 18 मार्च को 70 सदस्य की उत्तराखंड असेंबली का जो थे टोटल स्ट्रेंथ जो है ये स्पीकर को मिला के 71 मानी जाती है, 70 है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जब वहां पे जो बागी हुए एमएलए कांग्रेस से, तो उसमें 9, और उसमें ये पॉसिबिलिटी थी कि उनको वहां से सस्पेंड कर दिया जाए कि क्योंकि वो पार्टी से दल बदल करेंगे या जो भी करेंगे, तो उनको तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है उत्तराखंड असेंबली की 61 रह गई उनको 9 को निकाल के। तो कांग्रेस ने ये क्लेम किया कि अभी भी वो अपना मिला के कोई 33 एमएलए रख सकती है, मतलब इकट्ठे कर सकती है, जो कि ये दर्शाएंगे कि जो अप्रोप्रिएशन बिल है उसमें जो वोटिंग हुई उसमें वो 33 एमएलए करके, तो इससे सरकार चलती रहेगी। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर आपका अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होता है तो आप बजट वो जो पैसा है सरकारी पैसा खर्च नहीं सकते, और वो फर्स्ट अप्रैल से शुरू हो जाता है, और आप आज जानते हैं कि मार्च खत्म होने वाला है। तो ये क्राइसिस सिचुएशन तो है उत्तराखंड में कि अगर आपने अप्रोप्रिएशन बिल नहीं पास करा और ना ही आपके पास पूरे एमएलए हैं जो कि उसे आपने उस बिल को पास करा, तो एक क्राइसिस सिचुएशन तो आती है, उसका बीजेपी ने पूरा फायदा उठाया। तो मैंने जैसे आपको बताया तो कांग्रेस क्लेम कर रही है 33 एमएलए, और एक्चुअल जो इनकी स्ट्रेंथ है अगर उनको आप 9 को निकाल दें 27 रह जाते हैं। वो कहते हैं हम 6 एक और दूसरी पार्टी है वहां पे जो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट करके, उनके हैं 6 मेंबर, तो 27 अगर ये निकाल के बागियों को निकाल के 27 और 6 करें 6 के 12 तो 33 हो जाता, तो उससे उनका वो बिल पास हो जाता। मगर ये बात तब होनी थी अगर ये संडे को जैसे गवर्नर ने कहा था कि आप फ्लोर पे असेंबली के फ्लोर में बताइए यहाँ पे हम इतने जने हैं और हमने ये अप्रोप्रिएशन बिल पास कर दिया। वहाँ अरुण जेटली साहब का जो वित्त मंत्री भी हैं और वो वहाँ पे कांग्रेस के बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो उनका ये कहना है कि ये सब ये फिगर्स मैनिपुलेट किए हुए हैं तो और उनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो अब इसमें बड़ा खेल ये टेढ़ा हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है।
स्वराज जी, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ फेडरलिज्म है, उसी तरीके से भारत में भी संविधान फेडरलिज्म के हिसाब से ही बनाया गया, तो आपको लगता है कि वो कारगर है, काम कर रहा है? वहाँ पर ऐसी घटनाएं आम हो रही हैं, सूटकेस की सरकार या संवैधानिक व्यवस्था चरमरा जाती है?
देखा जाए तो पहले नेता लोग पॉलिटिशियन ये खेल किया करते, आजकल राजनीति जो है वकीलों के हाथ में गिर गई है, अभी वरिष्ठ और ऊंचे आप ले लीजिए नाम कपिल सिब्बल हुए, दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंह जी हैं जो बीजेपी की तरफ आपके आ गए, ये अपने
अरुण जेटली जी,
तो ये अब ताकत जो है मतलब देखो दो तरह से चीजें चलती हैं। हमारा जो देश है आजादी के बाद इन्होंने फेडरल पॉलिटी के लिए करा, मतलब कि तो जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया में एक ये फेडरल गवर्नमेंट है कैनबरा में और बाकी आपकी डिफरेंट स्टेट की गवर्नमेंट, तो इसी तरह इंडिया में भी दिल्ली में नई दिल्ली में फेडरल गवर्नमेंट बैठती है और ये आपके जो है स्टेट गवर्नमेंट, तो बड़ी अच्छी तरह से हमारा फेडरल गवर्नमेंट चल रहा है। हालांकि इसमें त्रुटियां हैं, खामियां हैं, कमी है, और हमने पिछले 60-70 साल से एक अच्छा एक नींव हमारी अच्छी पड़ी है फेडरल गवर्नमेंट की, और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा अनलाइक द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे कन्वेंशन और ये चलते हैं, तो हमारे को भी जरूरत है कन्वेंशन बनाने की और ये करने की, तो इस तरीके। लेकिन अब जो है जो मैंने कहा आपसे कि अब हम नाम किसका सुनते हैं, हम टॉप के नेताओं का नाम नहीं सुनते कि जब इस तरह की फेडरल स्टेट और सेंटर के रिलेशनशिप की बात आती है तो उसमें ट्रेडिशन और कन्वेंशन की बड़ी भारी जरूरत है। अगर हम कोर्ट में जाके हर चीज को लड़ाई कोर्ट में ले जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल का मसला ये है कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है मगर एक पॉलिटिक्स में एक थोड़ा, क्योंकि हम पॉलिटिक्स क्यों खेल रहे हैं, आम जनता की भलाई के लिए, अगर हम सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट इसी चीज में लड़ते रहे और राजनीति पेज में और एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें, ये प्रथा तब से चली, आपको याद होगा जब 1970 के दशक में जो एमरजेंसी लगी थी
जी,
और इंदिरा गांधी जी ने उसको उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी, और उन्होंने फिर वो एक तरह से 2 साल सबको पता है कि उसमें कई आजादियां त्रुटियां आई, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हेरा फेरी हुई और वो हुई, तो एक वो जो एक चला एक आप स्पेल कह लीजिए उसमें, तो उसमें हमारे को थोड़ा क्षति तो पहुंची है भारतीय डेमोक्रेसी को, मगर इसको ये इतना बड़ा देश है और इतना हमारी अच्छी, जैसे नेहरू जी, गांधी जी ने और अम्बेडकर जी ने और बहुत बड़े सरदार पटेल जी ने, बड़े दूरदृष्टि के ये लोग थे जिन्होंने एक नींव जो है हमारी जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन की नींव है बहुत अच्छी कर दी है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि ये जो दिग्गज वकील बैठे हैं और कम पॉलिटिशियन, मैंने जिनके नाम दिए अभी आपको, तो इन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि एक राजतंत्र, एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र को की जो ताकत है वो एक वकीलों की एक्सपर्टीज से नहीं आती, वो आती है कि जनता की भावना समझना, एक ट्रेडिशन एस्टेब्लिश करना, फेयर प्ले करना, और जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चले, जिससे कि एक कंटिन्यूटी रहे एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, मंत्री बदलते हैं, आपके टोनी एबट साहब आए चले गए, और कोई आया अच्छा चले, और मगर एडमिनिस्ट्रेशन तो बराबर चलता है ना, आपस में राजनीति चलती है, पॉलिटिक्स चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप दखल ना दीजिए ना, तो ये चीजें धीरे धीरे आएंगी, अब सेटल होंगी, क्योंकि अब हमारा हम तो यंग ही कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपका पुराना डेमोक्रेसी है, पुरानी ट्रेडिशन है, तो हमारा तो अभी 60-70 साल का ही अभी चल रहा है कि जो फेडरल स्टेट ये रिलेशनशिप है और ये जो है ये वर्क ठीक आएंगे।
स्वराज जी, आपको क्या लगता है कि ये सारा मामला अब कहाँ खत्म होगा, क्या चुनाव अभी हो जाएगा?
देखिए, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, ये तीन बड़े स्ट्रॉन्ग जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिलेटेड आर्म्स हैं, जो कि जिससे फंक्शन होती है, ऑफकोर्स फोर्थ स्टेट आप प्रेस भी कर सकते, मगर इनमें सबसे जरूरी है इन सबको अपनी अपनी सीमा बांधनी चाहिए और एक दूसरे की ऊपर अपना वो थोपना नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ कि जैसे जुडिशरी को एग्जेक्टिव के ऊपर लेजिस्लेचर के ऊपर अपना नहीं थोपना चाहिए, उसी तरह एग्जेक्टिव को अपना अपना जो एग्जेक्टिव का काम है वो उनको जुडिशरी पर नहीं थोपना चाहिए। अब ये चीजें पॉलिटिकल चीजें हैं और इसमें बड़े दाव पेच और गहराइयां होती हैं, उसमें आप क्यों जुडिशरी को इन्वॉल्व करते हैं नंबर वन। तो इसमें आप अपने आप बैठ के उसको, और सबको पता है कि क्या क्या इसमें लिमिट्स हैं, क्या क्या नहीं है, क्या क्या सच है, क्या क्या झूठ है। तो अब राजनीति में तो खैर कुछ ना कुछ ये तो चलता ही रहता है। तो अब जो कोर्ट्स हैं, जो हमारे हाई कोर्ट हैं या सुप्रीम कोर्ट हैं, इन्होंने भी पहले ये इस तरह के कोर्ट ये आ चुके हैं, दो केसेस आए थे इसमें, उसमें लीगल डिटेल में नहीं जाना चाहता, अगर संक्षिप्त में आपको बता दूं कि उसमें उन्होंने ये कहा था क्लियरली, ये तो ठीक है कि आपका प्रेजिडेंट रूल तो लगा सकते हैं, ये प्रेरोगेटिव जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को है, ये राष्ट्रपति को है कि आप प्रेजिडेंट रूल तो लगा सकते हैं, लेकिन उसमें जो आपने कारण दिखाए हैं क्या वो क्वालिफाई करते हैं कि आपका ये जो लगाना ठीक रहा कि नहीं। तो उसमें जुडिशरी का हस्तक्षेप तो है ही, क्योंकि उसमें ये जो ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, ये हमारे जो संविधान बना आजादी के बाद, उसमें ये क्लियर नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन, ये एक उनकी काबिलियत पे, उनकी ईमानदारी पे, क्योंकि ये सोचा गया था जब हमारा संविधान बना कि जो नेता लोग आएंगे, पॉलिटिशियंस आएंगे, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, वो भी अपना रोल अदा करेंगी और झूठ और उचक्केपन से ये काम नहीं करेंगे। तो अगर हम सबको चोर लेके चले तो फिर तो कुछ चीज चल ही नहीं सकती, तो हमें तो किसी पे तो विश्वास करना पड़ेगा। तो इन लोगों को भी ये सोचना चाहिए, सब चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी को, इनको ये सोचना चाहिए भैया अगर हम इतना उल्टा सीधा काम करेंगे, जो हुआ है पास में ऐसा नहीं, तो कोर्ट ने भी इंटरवीन करके इंस्टॉल करा। तो इसमें दो बातें तो मेरी बिल्कुल क्लियर है, ये एक तो कोर्ट कहता है कि भाई आप लगा दो प्रेसिडेंट, मगर आप जस्टिफाई करो। तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये तारीख आ रही है जी, जो हमारा जो पार्लियामेंट है, संसद मिलेगी अप्रैल में, उन्होंने भी वहां अप्रोप्रिएशन बिल पास करना है, क्योंकि वो बिल पास नहीं होगा तो फिर सरकार वहां, भारत सरकार, मोदी सरकार भी पैसा नहीं खर्च सकती। तो जब वो मसला उठेगा वहां पे अप्रोप्रिएशन बिल का, तो उसके साथ ये भी मसला उठेगा उत्तराखंड का कि इसमें क्या, वहां पे सारी डिबेट होंगी, डिस्कशन होगा, हंगामा होगा, सारा कुछ। मगर बीजेपी नहीं चाहती ये वहां पे उतनी तक हम वेट करें, 25 अप्रैल या उसी के आसपास का तारीख है, अप्रैल के एंड में कह दीजिए। तो वो ये चाहेंगे कि यहाँ पे हम ये कांग्रेसी, जो बागी कांग्रेसी हैं या और भी हैं, उनसे मिलकर हमसे अंदर घुस के या बाहर करके हम पहले सरकार चलाएं मिलके, और उनको हरीश रावत जी की कांग्रेस सरकार को किनारे कर दें, क्योंकि उसमें एक साल बाद यहाँ भी इलेक्शन होनी है उत्तराखंड में। मैंने जैसे कहा जो पावर में आएगा उसका रोल अच्छा हो जाता है।
स्वराज जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं SBS को भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया।